नमस्कार भारत, आज है 24 मई, दिन मंगलवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान हुए कई महत्वपूर्ण करार, लेकिन पाकिस्तान में क्यों बड़ी चिंता?
कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि हम बहुत ही साइलेंट हैं, इसके लिए बहुत ही बड़ा एक मेजर लॉस है, स्ट्रेटेजिक लॉस है ये।
सर्बानंद सोनोवाल आज लेंगे असम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने में जुटे नीतीश कुमार ने झारखंड में बाबूलाल मरांडी से मिलाया हाथ। मिलिएगा चार ऐसे भाई बहनों से जिन्होंने कठिन सिविल सेवा परीक्षा पास कर माता पिता का आंगन खुशियों से भर दिया है।
मैंने कोई घुट्टी नहीं पिलाई, लेकिन मेरा भी सपना था कि मेरे बच्चे बड़े अधिकारी बने और आईएएस बने, और इन्होंने ये कर दिखाया।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के लिए हुआ समझौता मील का पत्थर है। मोदी के दो दिवसीय दौरे के दौरान भारत और ईरान के बीच कुल 12 समझौते हुए। इनमें बंदरगाह विकास के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत और ईरान के बीच चरमपंथ मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध के खतरे से मुकाबले के लिए नियमित विचार विमर्श पर सहमति बनी है। ब्राजील में एक टेप सामने आने के बाद नए सरकार के प्रमुख मंत्री को हटना पड़ा है। इस टेप में योजना मंत्री रोमेरो ज़ियुका कथित तौर पर कह रहे थे कि ज़िल्मा रुसेफ के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई से तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार की जांच रुक सकती है। अंतरिम राष्ट्रपति मिशेल टेमर के सहयोगी ज़ियुका का कहना है कि उनकी बात को गलत समझा गया, वो भ्रष्टाचार की जांच का समर्थन करते हैं। वहीं राष्ट्रपति पद से हटाई गई रुसेफ का कहना है कि टेप से जाहिर है कि उनके खिलाफ महाभियोग भ्रष्टाचार में घिरे बड़े लोगों को बचाने की राजनीतिक साजिश है। सीरिया की सरकार ने आरोप लगाया है कि तरतौस और जबलेह शहरों में हुए धमाके के पीछे तुर्की, कतर और सऊदी अरब का हाथ है। सीरिया का कहना है कि इन धमाकों का मकसद शांति की कोशिशों में बाधा पहुंचाना है। राष्ट्रपति बशर अल असद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में हुए धमाके की जिम्मेदारी खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले संगठन ने ली है। तुर्की, कतर और सऊदी अरब सीरिया के कई विद्रोही गुटों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये तीनों देश इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा है। तरतौस में हुए धमाके में बाल बाल बचे मोहम्मद मुथलेज ने बीबीसी को बताया। मैंने वहां पहुंचकर गाड़ी पार्क की ही थी कि धमाका हो गया। मैं वहीं खड़ा था, मेरे पीछे खड़ी कार में आग लग गई। मैंने ज़मीन पर लोगों के शव देखे। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन ये तकदीर की बात नहीं है, ये चरमपंथियों का काम है। ये थे मोहम्मद मुथलेज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अलेक्जेंडर फैन डेर बेलेन ने कहा है कि वो देश को एकजुट करने और नई राजनीतिक संस्कृति विकसित करने की कोशिश करेंगे। करीबी मुकाबले में फ्रीडम पार्टी के नोबेट होफोर को मात देने वाले बेलेन की जीत पर यूरोप के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि पूरा यूरोप राहत की सांस ले रहा है। वहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने कहा है कि ये राहत की बात है कि ऑस्ट्रिया ने अतिवाद को खारिज कर दिया। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाने का ऐलान किया। सबसे महत्वपूर्ण रहा ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का करार, जिससे भारतीय उत्पादों को पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किए बिना अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का रास्ता मिलेगा। साथ ही भारत इस रास्ते से मध्य एशिया से तेल भी ला सकेगा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन के बड़े निवेश को देखते हुए भी भारत और ईरान की रणनीतिक मैत्री के व्यापक मायने हैं, क्योंकि इसे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिठाने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ निखिल रंजन।
गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी ताबे काशान निमगाम अस्त। मीन्स once we make up our mind, the distance between Kashi and Kashan is only half step.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गालिब का ये शेर पढ़कर भारत और ईरान के बीच दोस्ती मजबूत करने के लिए जिस इच्छा शक्ति की बात की, वो सिर्फ बातों में ही नहीं, कोशिशों में भी नजर आई है। चाबहार पोर्ट पर हुआ समझौता तो ऐतिहासिक है ही, इसके अलावा भी दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ कई कदम बढ़ाए हैं। अपनी जरूरतों का करीब 85% तेल आयात करने वाला भारत ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के दौर में सऊदी अरब पर ज्यादा निर्भर हो गया था, लेकिन अब ईरान से भारत को तेल का निर्यात दोगुना करने पर बातचीत हुई है। जाहिर है कि इससे सऊदी अरब पर भारत की निर्भरता थोड़ी कम होगी और उसे मोलभाव करने में भी सुविधा होगी। दोनों देशों के बीच भुगतान की समस्या को भी करीब करीब सुलझा लिया गया है, जो एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को मील का पत्थर कहा है।
The bilateral agreement to develop the Chabahar port,
चाबहार बंदरगाह और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए हुआ करार, और इस उद्देश्य के लिए भारत की तरफ से करीब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुहैया कराया जाना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के साये से बाहर निकले ईरान की जरूरतें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि तब के करीब 3 दशकों में ये देश एक तरह से रोका हुआ था। आम शहरी जीवन की जरूरतों में बहुत कुछ ऐसा है जो तब ईरान के लिए जुटा पाना मुश्किल था। भारत के साथ ईरान की पुरानी दोस्ती रही है, और अब प्रतिबंधों का हटना दोनों देशों को अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए खूब सारे मौके दे गया है। ईरान भारत से बहुत कुछ चाहता है। ایرانی راشتپتی حسن روحانی:
با توجه به شرایط انرژی در ایران
اورجا کے معاملے میں ایران کی استھتی اور بہت سمرد بھارت کی کھان ساتھ ہی چابہار جیسے رڑنیتک بندرگاہوں کی موجودگی کو دھیان میں رکھیں تو ہم سنیکت روپ سے بہت سے ادھیوگوں کو وکست کر سکتے ہیں ان میں ایلومینیم اسٹیل اور پیٹرو کیمیکلز بھی شامل ہیں
بھارت کو ایران کی زیادہ ضرورت ہے یا ایران کو بھارت کی इस वक्त ये ठीक ठीक बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल जाहिर है कि दोनों देश इस मौके का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहना चाहते। कोशिशों को अमली जामा पहनाते वक्त भी शायद यही गर्मजोशी नजर आए।
जानकारी दे रहे थे निखिल रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे पर जितनी उत्सुकता भारत में थी, उससे कहीं ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में होने की बात कही जा रही है। आखिर भारत और ईरान के संबंधों में ऐसा क्या खास होने जा रहा है जिससे पाकिस्तान को परेशानी हो सकती है? हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने यही सवाल पूछा मध्य एशिया मामलों के जानकार फजलुर रहमान से।
पहली वजह तो ये है कि रीजन में इंडिया अगर किसी भी मेजर कंट्री के साथ कुछ करता है, किसी भी तरह का फ्रेंडशिप का जो जेस्चर है या कोई ग्रोइंग अलायंस है या कंसोलिडेटिंग रिलेशनशिप है, तो पाकिस्तान को वो एक नेचुरली इम्पैक्ट करता है, इसलिए कि दोनों एक बड़े ही स्ट्रांग राइवल हैं इस रीजन में। और दूसरी बात ये कि चाबहार का जो प्रोजेक्ट इंडिया ईरान दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसको लेके पाकिस्तान को ये लगता है कि इसका अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो गया इस पूरे प्रोजेक्ट का, तो पाकिस्तान साइडलाइन हो जाएगा। उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह यह है कि इंडिया को जो डायरेक्ट रूट मिलेगा अफगानिस्तान के लिए, अभी तक ये होता रहा है कि इंडियन जो चीजें हैं वो तो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जाती हैं, लेकिन जब अगर ये प्रोजेक्ट फुल्ली तरीके से ऑपरेशनल हो गया तो इंडिया का एक डायरेक्ट जो है एंट्री हो जाएगी एक्सपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से फिर इंडिया जो है सेंट्रल एशिया और बहुत सारी ईस्टर्न यूरोप जो पार्ट है वहां भी इंडिया के जो गुड्स हैं वो सप्लाई हो सकते हैं। तो इससे ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि हम बहुत ही साइडलाइन हो जाएंगे, इसके लिए बहुत ही बड़ा एक मेजर लॉस है, स्ट्रेटेजिक लॉस है ये। दूसरी बात यह है कि अभी तो ये बुनियाद है, एक जो नया ईरान जिसको हम आप कह रहे हैं, वो जो सैंक्शन हटने के बाद पाकिस्तान में खतरा यह है कि इस एंगेजमेंट के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं वो पाकिस्तान के लिए एक निगेटिव रोल प्ले कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक इशू है टेररिज्म का, उस पर इंडिया ईरान जो है हमेशा ही साथ रहे हैं, और जाहिर सी बात उस रीजन में जो कुछ हो रहा है ISIS के नाम पे हो रहा है या एक्सट्रीमिज्म के नाम पे हो रहा है, टेररिज्म के नाम पे हो रहा, तो इंडिया को एक बड़ा ही मेजर पार्टनर मिला है जिससे इंडिया ओपनली इंगेज कर सकता है और दोनों साथ मिलके ग्लोबल फोरा पे जो है इस इशू को उठा सकते हैं। जब भी टेररिज्म की कोई बात उठेगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम आना ही आना है, और जब दो मेजर कंट्री इस रीजन की अगर एक बात साथ करेंगी तो उससे पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा।
एक ये जो बात कही जा रही है कि जो पाकिस्तान ने ग्वादर में चीन के साथ करार किया, तो शायद भारत उस चीज को भी चुनौती देना चाहता है इस करार के जरिए, या कहीं ना कहीं इस तरह की ऐसी कोशिश है, कितना सही मानते हैं आप इसको?
जी नहीं, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही बड़ा एक काउंटर बैलेंसिंग फैक्टर है इंडिया के लिए। और जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है और इस इकोनॉमिक इंगेजमेंट के जरिए जो अपने आपको स्ट्रेटजिकली जो उस रीजन में प्लेस कर रहा है चाइना और पाकिस्तान, उसके लिए एक बहुत ही मेजर काउंटर बैलेंसिंग मूव है जो पाकिस्तान कभी भी लाइक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया का अभी जिस तरह का चाइना का रोल है ग्वादर में, तकरीबन उसी तरह का रोल इन फाइनेंशियल टर्म इंडिया का भी है। इंडिया ने ऑलरेडी तकरीबन $100 मिलियन पेज कर दिया है, आज मोदी जी ने प्रॉमिस किया है कि $500 मिलियन और वो करेंगे वो। तो उससे लगता है कि जिस तरह का जो एक वेट जो पाकिस्तान को लग रहा था कि ग्वादर प्रोजेक्ट के जरिए हमने एक बहुत बड़ा एक विक्ट्री, एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री मैंने हासिल कर ली है, इमीडिएटली ये जो चाबहार का प्रोजेक्ट है उसने इस पूरे रेटोरिक को, जो पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा रेटोरिक एक शेप ले रहा था कि हम तो बहुत बड़े चैंपियन है इस ग्वादर पोर्ट के जरिए, हम बहुत कुछ, हमारी इकोनॉमी, हमारी हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सब कुछ इससे और फर्दर इस्टैब्लिश होगी, तो उससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है।
ये थे मध्य एशिया मामलों के जानकार फजलुर रहमान।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
गुवाहाटी में आज बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लंबे अरसे से उत्तर पूर्वी भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रही बीजेपी के लिए आज वाकई बेहद खुशी का मौका है। शायद इसीलिए पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह को पूरी भव्यता प्रदान करने की कोशिश की है। सीधे चलते हैं गुवाहाटी अपने सहयोगी दिलीप शर्मा के पास। दिलीप, कैसी तैयारी है सर्बानंद सोनोवाल के शपथ ग्रहण समारोह की?
जैसे कि आपने कहा कि पार्टी ने पहली बार यहाँ पूर्वोत्तर में अपनी जीत दर्ज की है, तो इस शपथ ग्रहण समारोह की भव्य जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित करीब देश के 100 वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, और उन प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है, जहां एनडीए की सरकार है, उन प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मेरी यहाँ के कामरूप जिला के उपायुक्त अंगामत्तु से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एक भव्य पंडाल बनाया गया है। गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित वेटरनरी का एक खेल मैदान है जहां करीब 1.5-2 लाख लोगों के जमा होने की कैपेसिटी है, और जिला प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, और इसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शाम 4:30 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है, और अभी तक ऐसी संभावना है क्योंकि अभी उनकी मंत्रियों की जो सूची है वो सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि सर्बानंद के साथ कुछ मंत्री शपथ लेंगे, और इनमें से जो गठबंधन है असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के, उसके 2-2 मंत्री शामिल रहेंगे।
दिलीप, जो दूसरी पार्टियां हैं तमाम देश के दूसरे राज्यों में, ऐसे कौन से बड़े बड़े नेता हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं लेकिन आ रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में?
जैसे कि मैंने कहा कि एनडीए की जहां सरकार है, गठबंधन की सरकार, प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की बात इन्होंने कही है। मेरी बात हुई थी बीजेपी के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा कि वो प्रकाश सिंह बादल आ रहे हैं। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, और इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो स्पिरिचुअल गुरु बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर के अलावा 100 से अधिक स्पिरिचुअल गुरु यहाँ जमा होंगे, और इतने भव्य तरीके से यहाँ तैयारियां हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि सर्बानंद सोनोवाल जो है वो माजुली से चुनाव जीत के आ रहे हैं। माजुली वैष्णो धर्म का धर्म केंद्र माना गया है, तो वहाँ के जो मठ है, यहाँ हमें यहाँ स्थानीय भाषा में हम सत्र कहते हैं, तो वहाँ के सारे मठाधीश यहाँ उपस्थित रहेंगे।
जी दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वियतनाम का दौरा किया और हथियारों के निर्यात पर लगी ऐतिहासिक रोक को पूरी तरह से हटा लिया। दोनों देश कभी एक दूसरे की तरफ देखना भी नागवार समझते थे। ऐसे में ऐसी क्या बात हुई कि अमरीका ने रिश्तों की कड़वाहट मिटाने के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया? वियतनाम के लिए हथियारों के निर्यात पर रोक हटाए जाने का क्या मतलब है, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने बात की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद के रिसर्च फेलो राहुल मिश्रा से।
देखिए, एक बहुत बड़ी चीज तो ये है कि राष्ट्रपति ओबामा की वियतनाम यात्रा एक चीज ये प्रूव करती है कि अमेरिका अब जो जैसे वियतनाम सिंड्रोम कहते हैं उससे बाहर आ गया है। तो ये पहला मेजर चेंज अमेरिकन लोगों के, अमेरिकन लीडर्स के साइकी में ये बड़ा चेंज है, और वियतनाम की तरफ से भी उसी तरह से जो है मुझे लगता है गर्मजोशी से इसका स्वागत किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से ये एक चीज क्लियर है, वो इसे इतिहास के पन्नों में दबा देना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका आज ये जो एम्बार्गो हटाने की बात है या मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस बढ़ाने की बात है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और चीन की वजह से ही मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में तेजी आई है। क्योंकि देखिए 1984 में जब ये एम्बार्गो लगाया गया था, तब से 2014 में पार्शियली इसको हटा लिया गया था, क्योंकि कंडीशंस थी कि जो है मानवाधिकार के मुद्दे हैं और वियतनाम की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उस पे सवाल थे, उन वो सब सवाल अभी भी मौजूद है। लेकिन ये जो तेजी आई है इसके पीछे कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी का मुद्दा है, या चीन की जो गतिविधियां बढ़ी हैं, चीन की जो एक आक्रामक पॉलिसी हुई है साउथ चाइना सी में, वो बहुत बड़े फैक्टर है।
जो एम्बार्गो हटा है उससे वियतनाम को क्या फायदा होने वाला है?
देखिए वियतनाम एक छोटा देश है जिसकी बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है कि वो अमेरिका के सबसे हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीद लेगा। वियतनाम वैसे भी पिछले बहुत से दशकों से रूस से हथियार जो है वो लेता रहा है। मुझे लगता है सबसे पहला जो वियतनाम के नेता और वियतनाम के जो मिलिट्री लीडर्स हैं, वो सबसे पहली चीजें जो ढूंढेंगे वो स्मार्ट वेपन्स हैं, जैसे कि कोस्टल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हथियार हैं, या वो हथियार जो बहुत महंगे नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वेलांस मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है, मॉनिटरिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उनको, वो सारी चीजें मुझे लगता है वियतनाम उसके लिए बहुत तेजी से अग्रसर होगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस एम्बार्गो हटने के तुरंत बाद नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज ये है कि रशिया के साथ जो वियतनाम के संबंध है वो सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त पे ही निर्भर नहीं है, उनके नेताओं के बीच में एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, बहुत पुराना साथ रहा है, वो जल्दी से खत्म नहीं होगा। लेकिन वियतनाम इससे बार्गेन करेगा, रशिया से कुछ ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा, अमेरिका आ गया है तो एक कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगी।
ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद के रिसर्च फेलो राहुल मिश्रा। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बीजेपी के खिलाफ गठबंधन तैयार करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड में नया साथी ढूंढ लिया है। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से हाथ मिलाया है। इस राजनीतिक दोस्ती से मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा और जेडीयू के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, लेकिन बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
रांची में झारखंड विकास मोर्चा के महाधिवेशन में नीतीश कुमार ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की खुलकर तारीफ की। गौरतलब है कि झारखंड अलग राज्य गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सूबे के पहले मुख्यमंत्री बने थे, तब वे बीजेपी में थे। साल 2006 में बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इस बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी से 8 लोग चुनाव जीते थे। बाद में उनके 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। यहाँ जनता दल यूनाइटेड का कोई विधायक नहीं है। हालांकि तमाम उतार चढ़ाव के बीच मरांडी बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, लिहाजा नीतीश कुमार ने अब झारखंड में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे झारखंड विकास मोर्चा के साथ मिलकर काम करें। इससे पहले 10 मई को नीतीश कुमार ने धनबाद में शराबबंदी के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी, तब उनके साथ मरांडी भी थे। इन कार्यक्रमों को लेकर झारखंड विकास मोर्चा की कार्यकर्ता सुनीता कहती हैं,
नीतीश जी ने जो बाबूलाल जी पे जो भरोसा जताया है कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में ही झारखंड में मजदूरों का, किसानों का, छात्र नौजवानों का, महिलाओं का एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन होगा, बदलाव होगा जो झारखंड को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा।
जबकि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम मित्तल पलटवार करते हैं,
बाबूलाल जी और नीतीश कुमार जी दोनों झारखंड में जमीन तलाश रहे हैं, ये अंधे और लंगड़े की दोस्ती है जिसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है झारखंड में।
वहीं सूबे में 19 विधायकों वाले प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है,
अभियान को साधु हुआ लेकिन नीतीश जी कहीं ना कहीं राजनीतिक भूल कर रहे और जिनका बहुत ज्यादा अब रिलेवेंस है नहीं।
नीतीश की राजनीतिक गतिविधियों पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बैजनाथ मिश्र कहते हैं,
कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार करेंगे क्या? नीतीश कुमार बिहार में है, अगर मानी 17 को सीट 18 को सीट इनको मिलेगी सब जीत जाएंगे, सब जीत लेंगे। बाबूलाल बहुत जान लगा देंगे, 3 को 2 को जीत लेंगे, और कहां इनके पास आदमी है।
बहरहाल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद से नीतीश कुमार का यह ताना बाना कितना सिरे चढ़ता है यह देखने लायक होगा। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले अनिल प्रकाश मिश्र ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। इन चारों ने कामयाबी की ऐसी मिसाल कायम की है कि न सिर्फ इलाके में बल्कि पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। देश की कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में उनके चारों बच्चों ने सफलता हासिल की है। उनकी सफलता का राज जानने के लिए समीरात्मज मिश्र पहुंचे उनके घर। सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ के अनिल प्रकाश मिश्र के बमुश्किल दो कमरों के मकान में कामयाबी की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो जाएगी, ऐसा शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बातचीत का सिलसिला शुरू होते ही पहला सवाल जहन में यही आया, ये बताएं कि कौन सी घुट्टी पिलाई आप लोगों ने?
हमने सबको मेहनत करने की शिक्षा दी, बाकी तराशने का काम इनके गुरुओं ने किया है, जिसमें पहला नाम श्री नारायण तिवारी का, विजय कुमार तिवारी का, विजय प्रकाश पांडे का। इन लोगों ने वो आधारशिला रखी है जो जिसका भवन आपके सामने है। इन्हीं सब का योगदान है और श्रेय भी इन्हीं लोगों का।
माता जी ये तो बात टाल गए, इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने कौन सी घुट्टी पिलाई, आप ज़रूर बताएंगी।
मैंने कोई घुट्टी नहीं पिलाई, लेकिन मेरा भी सपना था कि मेरे बच्चे बड़े अधिकारी बने और IAS बने, और इन्होंने ये कर दिखाया। पालन पोषण हमने इस तरह किया कि हमने अपने बेटी बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया, जैसे लड़का था वैसे लड़की थी, दोनों को एक ही विद्यालय में पढ़ाया, एक ही शिक्षा दिया।
बच्चों की सफलता से प्रसन्न अनिल प्रकाश मिश्र बातचीत के दौरान काफ़ी भावुक हो जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी क्षमा मिश्रा का चयन इस बार IPS के लिए हुआ है। इससे पहले उनका चयन UPPCS में भी पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए हुआ था और इस समय वो मुरादाबाद में प्रशिक्षण ले रही हैं।
बचपन से जब भी हम लोग घर में बैठे रहते थे और घर में कोई आता था, पापा उससे बात करते थे, तो हमने अक्सर सुना है पापा कहते थे ये सबसे बड़ी परीक्षा है, ये सबसे बड़ी नौकरी है, और ये अचीवमेंट पाना शायद एटलीस्ट इंडिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और वही सुनकर वही देखकर हम चारों ने भी इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, और सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर रहा लेकिन अंततः लक्ष्य प्राप्त हुआ, तो काफ़ी खुशी हुई कि हमने अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा किया।
इटावा ज़िले के ताखा ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात लोकेश मिश्र अनिल प्रकाश मिश्र के सबसे छोटे बेटे हैं और इस बार उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में 44वीं रैंक हासिल की है। वो बताते हैं कि भाई बहनों के बीच प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी का भाव रहा।
कंपटीशन तो कभी नहीं मिला, हमेशा कोऑपरेशन ही मिला, और मेरे साथ सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, और मेरे तीनों भाई बहनों ने मेरा हर मौके पे, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में और शुरू से लेकर आज तक की पढ़ाई में मेरा हमेशा मुझे प्रेरित किया, हमेशा मेरी मदद की।
अनिल प्रकाश के इन बच्चों ने कस्बे के ही स्कूलों में पढ़ाई की और सफलता का परचम इन लोगों ने कोई पहली बार नहीं लहराया है, बल्कि ऐसा वो बचपन से करते आए हैं। सबसे छोटे बेटे लोकेश मिश्र ने IIT से BTech किया और एक साल पहले ही उनका चयन UPPCS में भी हुआ था। योगेश मिश्र भी इंजीनियर हैं और पिछले साल सिविल सेवा में चयनित हुए थे। वहीं छोटी बेटी माधवी मिश्रा मसूरी में ट्रेनिंग कर रही हैं और इससे पहले उनका चयन भारतीय अर्थ सेवा में हुआ था। चारों भाई बहनों के स्कूल शिक्षक श्री नारायण तिवारी बताते हैं कि इनके अध्यापक भी इनकी प्रतिभा के कायल थे।
अलग अलग क्लासेस में ये बच्चे जब रहा करते थे, चाहे वो क्षमा हों, योगेश हों, माधवी या लोकेश हों, तो इन सब बच्चों का मैं उदाहरण दिया करता था क्लास में और कहा करता था कि भविष्य में ये बच्चे जो है इस विद्यालय का नाम करेंगे, अपने गुरु का नाम ऊँचा करेंगे और अपने बाबा और अपने माँ बाप का नाम ऊँचा करेंगे, और इनका अनुकरण करके आप लोग आगे बढ़िए।
श्री नारायण तिवारी के मुताबिक अच्छे पद पर नौकरी करने के बावजूद अनिल प्रकाश मिश्र का घर आधुनिक सुख सुविधाओं से काफ़ी दूर है। उनके इस दावे की पुष्टि के लिए किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके घर को देखकर कोई भी इसका सहज ही अनुमान लगा सकता है। एक बात और, इन लोगों ने पढ़ाई की शुरुआत तो हिंदी माध्यम से की, लेकिन सिविल सेवा में माध्यम अंग्रेजी को चुना। क्षमा मिश्रा इसकी वजह बताती हैं।
CSAT के विषय में ज़रूर कहना चाहूँगी कि उसमें जो अंग्रेजी भाषा थी वो शायद रिमोट एरिया या ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए एक दिक्कत का सबब बन रही थी, और इसी को देखते हुए शायद संघ लोक सेवा आयोग ने इस जो भेदकारी तत्व था इस परीक्षा में उसको समाप्त करते हुए इसको सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल पर लाकर सीमित कर दिया है।
बहरहाल कामयाबी का इतिहास लिखने वाले इन भाई बहनों से बातचीत करके लगता ही नहीं कि इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। समीर आत्मज मिश्र, BBC प्रतापगढ़।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब वक्त है दिल्ली से निकलने वाले अखबारों की समीक्षा का। वात्सल्य, आज अखबारों में किन खबरों को प्रमुखता दी गई है?
जी अमरेश जी, जिन खबरों को प्रमुखता दी गई है उसमें नरेंद्र मोदी का जो ईरान का दौरा था, श्रीनगर में जो चरमपंथी हमले हुए और दिल्ली NCR में कल बारिश हुई थी, इन खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। लेकिन इन सब के बीच में दैनिक भास्कर ने अपनी लीड खबर बनाया है CSE के उस दावे को जिसमें बताया गया है कि ब्रेड खाने से कैंसर और थायराइड का खतरा है। अखबार का कहना है कि 38 बड़े ब्रांडों के 84% सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। अखबार ने यह भी जानकारी दी है कि सरकार ने कहा है कि ज़रूरत होगी तो वो भी इसकी जांच कराएगी। दूसरे अखबारों में भी ये खबर प्रमुखता से है, जनसत्ता ने इसको एंकर स्पेस में जगह दी है। वहीं जैसा मैंने आपसे बात की थी कि कश्मीर में जो कल हमला हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको अपनी लीड खबर बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तस्वीर भी लगाई है जिसमें महबूबा मुफ्ती श्रद्धांजलि दे रही हैं मृत शहीद को। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को पहले पन्ने के आखिरी कॉलम में जगह दी है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान दौरा था उसकी खबरें भी सारे अखबारों में प्रमुखता से छापी गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे लीड खबर बनाया है, हिंदू की लीड भी यही है। नवभारत टाइम्स ने इसको सेकंड लीड बनाया है और इसमें ये कहा है कि चीन और पाक की दोस्ती का जवाब है भारत और ईरान की दोस्ती। इसके साथ मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कल लौटे हैं रात में ईरान से और राष्ट्रपति आज 4 दिन की चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। जनसत्ता ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इनके अलावा कल जयललिता ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इस खबर को भी पहले पन्ने पर जगह मिली है और अखबारों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस खबर को जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन कहता है कि जया का पहला दिन, शराब पर चरणबद्ध पाबंदी, कर्ज माफ़ी। हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने के पैनल में इस खबर का सारांश दिया है और इसमें कहा गया है कि जया की दूसरी पारी के पहले दिन चीयर नहीं, शराब की जो दुकानें बंद हुई हैं उसके लिए ये कहा गया है। और जनसत्ता ने इसे लेकर ये कार्टून बनाया है जिसमें ये बताया गया है कि तमिलनाडु में 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। भारत ने कल स्वदेशी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया था, इस खबर को भी ज़्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। ज़्यादातर अखबारों ने इसे सिंगल कॉलम स्पेस ही दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक खबर में NIA और इंटेलिजेंस सर्विस के सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस्लामिक स्टेट ने पिछले हफ्ते जो डॉक्यूमेंट्री जारी की थी उसमें 2 लोग जो नज़र आए थे वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हो सकते हैं
जी।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकी पहचान की पुष्टि भी की है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले एक बार मुख्य समाचार आपसे ही सुन लेते हैं।
BBC समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के लिए हुआ समझौता मील का पत्थर है। मोदी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान भारत और ईरान के बीच कुल 12 समझौते हुए। ब्राजील में एक टेप सामने आने के बाद नए सरकार के एक प्रमुख मंत्री को हटना पड़ा है। इस टेप में योजना मंत्री रोमेरो ज़ुका को कथित तौर पर ये कहते हुए सुना गया कि ज़िल्मा रुसेफ के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई से तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार की जांच रुक सकती है। सीरिया की सरकार ने आरोप लगाया है कि तरतौस और जबलेह शहर में हुए धमाकों के पीछे तुर्की, कतर और सऊदी अरब का हाथ है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले अलेक्जेंडर फैन डेर बेलेन ने कहा है कि वो देश को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया दीपक जसरोटिया ने, और अब अमरेश द्विवेदी को अपने सभी सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।